गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी।
रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर
जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज
बिहारी
जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9 अध्याय का नाम है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या है 25। सब निकाल लिया, सबको मिल गया। मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेदेह प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेदेह प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेदेह प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् बोलिए। वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोलिए। ब्रह्मा उवाच ब्रह्मा जी ने कहा भगवन् हे भगवान सर्वभूतानां समस्त जीवात्माओं के अध्यक्ष नियंता अवस्थितः स्थित गुहाम हृदय के भीतर वेद जानो ही निश्चय ही अप्रतिरुद्धेन बिना बाधा के प्रज्ञानेन अंतः ज्ञान द्वारा चिकीर्षितम प्रयास करता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे इस श्लोक को और इस श्लोक से का जो प्रकरण है उसको समझेंगे। यहाँ जो कथा चल रही है वो ये है कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है और वे नहीं जानते हैं कि वे कौन हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ, कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं कौन हूँ, मैं इस कमल पर बैठा हुआ हो कौन हूँ और ये कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो वो बहुत चिंतित हो गए और अपने अलावा वे कुछ नहीं देख रहे थे, किसी को नहीं जान रहे थे। तो उन्होंने फिर जो है तपस्या की और तपस्या से जो है भगवान ने उनको दर्शन दिया और भगवान जो है उनसे हाथ मिला करके हंसते हुए बात करते हैं, तब बराबर का सम्मान दे रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी को। और पांच श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी से कुछ बातें करी हैं, इसके पहले के जो पांच श्लोक थे। और अब ब्रह्मा जी जो है बोलना शुरू कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कि भगवान से ये सबसे पहली बात हो रही है। 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की थी लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे कौन हैं, और अब वे जो है जान गए अपना कारण कौन है। भगवान है, भगवान ही मेरे कारण है। और अब ब्रह्मा जी भगवान से जो कुछ बात कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं बोल रहे हैं जैसे भगवान ने बोला। भगवान ने जैसे हाथ मिलाया और हंस करके बात की, अपने बराबर आदर किया, तो ब्रह्मा जी ने नहीं सोचा कि मैं भगवान के बराबर बन गया हूँ। ब्रह्मा जी जो है भगवान को समझ रहे हैं कि भगवान की स्थिति अलग है और मैं मेरी स्थिति अलग है ना। भगवान अपने भक्त को कभी अपने बराबर आदर दें तो भक्त ऐसा नहीं समझता है कि मैं बराबर हो गया भगवान के, है ना। तो भगवान अपनी उदारता से अगर किसी को अपने बराबर या अपने से बड़ा आदर करें, सम्मान दें, तो भक्त नहीं सोचता है कि मैं भगवान के बराबर हो गया या भगवान से बढ़कर हो गया, है ना। या अगर वो समझते हैं तो वो योग माया के प्रभाव से समझते हैं और वो भगवान कुछ प्रकार से प्रसन्न करते हैं तो योग माया के प्रभाव से, नहीं तो अपनी कोशिश से भक्त लोग ऐसा नहीं सोचता है। भक्त को अपने प्रयास से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान के बराबर हूँ या बढ़कर के बन गया हूँ। वो भगवान की योग माया कार्य करे तो वो अलग बात है, भगवान की योग माया भक्ति ज्ञान को ढके तो अलग बात है। तो ब्रह्मा जी जो है अपने को भगवान के बराबर नहीं समझ रहे हैं, इसलिए सबसे पहला शब्द क्या है इस श्लोक में, ब्रह्मोवाच तो क्या है, वो तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवन 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 का मतलब है हे भगवान, संबोधन। हिंदी में हम संबोधन करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, लेकिन संस्कृत में उसका एक शब्द है भगवन। भगवान का ही संबोधन जब हम करते हैं तो क्या होता है, भगवन, है ना। तो संस्कृत भाषा की ये विशेषता है कि कम अक्षरों में
ज़्यादा बात बोली जाती है। संस्कृत की विशेषता है कि कम अक्षरों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बोली जाए, है ना। तो अक्षर बहुत कम होते हैं लेकिन उसमें बात बहुत ज़्यादा होती है। तो भगवान का मतलब हे भगवान। तो सबसे पहले उन्होंने जो है अपने को बहुत ही तुच्छ मानते हुए और भगवान को जो है सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने संबोधन किया भगवान। और क्या कहा? भगवान सर्वभूतानाम समस्त प्राणियों के अध्यक्षो, आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का मतलब है आप के नियंत्रण में है सब प्राणी, आप समस्त प्राणियों के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का मतलब है जिसकी देख रेख में सब कुछ हो, है ना। अधि, अधि का मतलब नीचे, अक्ष माने आँख, तो जिसकी आँखों के नीचे समस्त प्राणी हैं, सब प्राणियों के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का मतलब यही होता है जिसकी आँखों के नीचे सब काम हो रहा हो, अध्यक्ष। सुपरवाइजर, जो ऊपर से देखे, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब जो ऊपर से देख रहा हो, ऊपर से देखता हो। और अध्यक्ष का मतलब है अधि, जिसकी आँखों के नीचे सब लोग हैं, है ना। तो आप जो है अध्यक्ष हैं समस्त प्राणियों के, अध्यक्ष हैं। तो इसमें अपने आप बात आ गई कि आप नियंत्रण कर रहे हैं, आपके नियंत्रण में सब कार्य हो रहा है। जिसकी आंखों के नीचे सब काम हो रहा है इसका मतलब उसके नियंत्रण में सब कार्य हो रहा है। तो आप सर्वभूतानाम अध्यक्षो भगवान, हे भगवान। ये संबोधन है, ब्रह्मा जी ने भगवान को संबोधित किया भगवान। सर्वभूतानाम अध्यक्षो, आप समस्त प्राणियों के अध्यक्ष। और कैसे आप जानते हैं या देखते हैं सब प्राणियों को? अवस्थितो गुहाम, अवस्थितो गुहाम। जैसे कोई सुपरवाइजर होता है तो भाई कहाँ से देखता है? ऊपर से, अपने ऑफिस से देखता है। उसका, उसके पास कैमरा होता है, कैमरे में सब सब कमरों का जो है उसके उसके ऑफिस में कैमरा होता है और वो जो है सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जितने भी काम करने वाले आदमी हैं तो उसको जानकारी होती है, तो वो सुपरवाइजर है ना। उसी प्रकार से भगवान अध्यक्ष हैं सब प्राणियों के, तो उनकी देख रेख में सब काम हो रहा है। तो वो देखते कैसे हैं? अवस्थितो गुहाम, अवस्थितो गुहाम का मतलब है गुहा में, गुहा का मतलब है गुफा। तो जो गुफा होती है, पर्वत की कोई गुफा होती है, कंदरा होती है, तो उसमें कोई व्यक्ति घुस जाए तो वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो सबको देखता है। आप समझ रहे हैं? किसी पर्वत की जो है कंदरा में अंधेरा होता है तो आप देखेंगे तो आप कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन वो अंदर से सबको देख सकता है, तो उसको गुहा, गुहा बोलते हैं, है ना। तो हृदय की गुहा में अवस्थित हो गुहाम, सर्वभूतानाम अध्यक्षो, फिर सर्वभूतानाम अवस्थितो गुहाम, समस्त प्राणियों की गुहा में आप अवस्थित हैं। तो आपके आपके हृदय में गुहा है जिसमें भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, आप नहीं देख सकते उनको, वो आपको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। वेद, वेद का मतलब जानते हैं भगवान। वेद, वेद का मतलब जानते हो, वेद भगवान, वेद अवस्थितो गुहाम, वेद, वेद माने आप जानते हैं। ही अप्रतिरुद्धेन, ही का मतलब निश्चय ही, और अप्रतिरुद्धेन का मतलब बिना किसी बाधा के। प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब बाधा कि नहीं, हरि बोल। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? बाधा, है ना। और आ लगा दिया तो नहीं, बिना बाधा के। अप्री अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन, आपका जो प्रज्ञान है, ज्ञान में प्रा लगाया, प्रकृष्ट ज्ञान। एक तो ज्ञान होता है, दूसरा प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान, है ना। यहाँ प्रज्ञा नहीं है बल्कि प्रज्ञान है, प्रज्ञान है। तो अपने प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा वेद आप जानते हैं अप्रतिरुद्ध न बिना किसी बाधा के चिकीर्षितम, चिकीर्षितम मतलब चेष्टाएं, इच्छाएं भी हैं और चेष्टाएं भी, चिकीर्षितम सर्वभूतानाम चिकीर्षितम, समस्त प्राणियों की चेष्टाओं को इच्छाओं को वेद यानी आप जानते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा था कि आप मुझसे वर मांगिए, आप मुझसे कुछ वर मांगिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो ब्रह्मा जी ने पहली बात तो बताई कि आप तो वैसे भी जानते हैं, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये भी संकेत है ब्रह्मा जी का। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं। तो भगवद गीता के कई स्थानों में है ये बात, कहाँ पर कौन बताएगा? एक तो इन्होंने बताया ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना, 18 का 61 और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो 15 15, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है गीता में तो, है सुहृदम सर्वभूतानाम, हाँ ये भी है सुहृदम, सुहृदम का मतलब कि हृदय में स्थित हैं वो भी है। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा थी, हाँ लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, सीधा नहीं है, है तो इसमें भी, लेकिन जो सीधी बात है वो ये 18 61 में सर्वभूतानाम हृदय से और सर्वसचाहम हृदय सन्निविष्टो, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष भगवान ने बताया। और बाकी तो व्याख्या के द्वारा मतलब बातें निकलती हैं इस तरह की। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, फलस्वरूप वे परम नियंता हैं। तो नियंता तो कोई व्यक्ति नियंता तभी बन सकता है जब वो देखे सब कुछ कि नहीं है? अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है तो कैसे नियंत्रण करेगा, है ना। नियंता बनने के लिए पहले तो देखना पड़ेगा ना कि कौन क्या कर रहा है ना। तो भगवान जो है साक्षी हैं, है फलस्वरूप, प्रभुपाद के फलस्वरूप वे परम नियंता है, इसलिए वो परम नियंता है ना। अब सरकार जो है नियंत्रण नहीं कर पाती, बहुत सी चेष्टाओं को नियंत्रण नहीं कर पाती कि सरकार की नज़रों से लोग जो है मतलब दूर होकर के बहुत से काम करते हैं, अवैध कार्य करते हैं और सरकार का जो है नियंत्रण नहीं हो पाता। कैसे नियंत्रण होगा अगर वो पता ही नहीं चलता, है ना। उनके सब मतलब उपाय हैं देखने के लिए, जासूस भी हैं, लेकिन कोई फिर भी जो है नहीं कर पाते इतना। लेकिन भगवान का जो है बहुत परफेक्ट, बहुत पूर्ण है नियंत्रण है, क्योंकि उनकी दृष्टि भी बहुत पूर्ण है, बहुत पूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि फलस्वरूप वे परम नियंता है, इस कारण से वे परम नियंता है। कोई परम नियंता नहीं बन सकता, पूरा नियंत्रण नहीं कर सकता। हालांकि देखना अलग बात है, फिर उसके ऊपर भी शक्ति चाहिए, नियंत्रण नियंत्रण करने की भी शक्ति चाहिए, है ना। अगर आप देख भी रहे हैं कि भाई ये गलत काम हो रहा है तो भी आप नियंत्रण नहीं कर सकते, आपकी शक्ति नहीं नियंत्रण करने की, तो वो अलग बात है। नहीं, पहली बात तो देखने की है, है ना। तो भगवान जो है मतलब इतना उनका जो है विज्ञान पूर्ण है, इतना विज्ञान पूर्ण है कि वे सब कुछ देख सकते हैं, है ना। तो परम नियंता है, तो वे जो है मतलब उनका, और फिर उनके पास शक्तियाँ भी हैं पूरी, नियंत्रण करने की भी शक्ति है, देखने की भी शक्ति है, साक्षी है वे सब कुछ, और उनके पास शक्ति नियंत्रण करने की भी शक्ति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं फलस्वरूप वे परम नियंता है, नियंता कर्म फलों का भोगता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता, है ना। तो जो नियंता है, जो भगवान है नियंता है, वे कर्म फलों को नहीं भोगते, जीव के साथ रहते हैं, परमात्मा के रूप में जीव के साथ रहते हैं, लेकिन कर्म फलों को नहीं भोगते, वे किसी भी जीव के कर्म के फल को नहीं भोगते, है ना। और उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उनकी स्वीकृति होती है तभी जीव के अंदर इच्छा होती है किसी प्रकार का सुख भोगने की, तो स्वीकृति वही देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता है ना, उपद्रष्टा, उपद्रष्टा भी वही अध्यक्ष, उपद्रष्टा सुपरवाइजर, ऊपरी दृष्टा ऊपर से जो देखने वाला है उपद्रष्टा, फिर अनुमंता, अनुमंता भी अनुमति भी देते हैं। जीव की अवैध इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, जीव के अंदर कुछ गलत इच्छाएं होती हैं सुख भोगने की, है ना, तो भगवान ही जो है अनुमति देते हैं, गलत काम करने की अनुमति भी भगवान देते हैं। लेकिन किस आधार पर देते हैं, किस आधार पर देते हैं कि तुम अपने खतरे पर करो ये कार्य, मैं जिम्मेदार नहीं हूं तुम्हारे कर्म फल का, तो मैं तुम्हारे कर्म फल को मैं नहीं भोगूंगा, कि मैं अनुमति दे रहा हूं तो मैं भी तुम्हारे कर्म फल को भोगूं। कोई अनुमति देता है ना गलत काम करने की तो क्या होता है, वो भी कर्म के फल में बनता है, वो भी फंसता है कि नहीं। अगर आप अनुमति देते हैं किसी की हत्या करने की या किसी का चोरी करने की, है ना, तो आपको भी जो है कर्म लगता है, है? लेकिन भगवान को नहीं लगता, क्योंकि भगवान किस आधार पर अनुमति देते हैं, है? कि तुम अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो, अपनी इच्छा से करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस कार्य का, आप समझे ना। तो इस तरह से उपद्रष्टा अनुमंता आचार, तो वे जो है अनुमंता है, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हरि बोल, आवाज कुछ हरि बोल, ठीक है आ रही है आवाज, बीच में कम हो गई थी ना, है अच्छा अच्छा अच्छा, लाइट से लेगी क्या, अच्छा 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 हाँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि वे अनुमंता है। आगे उदाहरणार्थ निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी, सुन रहे हैं सब लोग, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है, और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार ये संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। जितने भी जीवात्मा है आध्यात्मिक जगत से, इस भौतिक जगत में आए हैं, वे आध्यात्मिक जगत के शराबी हैं जो यहाँ इस निषिद्ध क्षेत्र में आए हुए हैं, है ना। कितना अच्छा है ना ये दृष्टि जो है प्रभुपाद दे रहे हैं हम लोगों को, कि हम लोग कैसे स्थान में हैं, है? निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है, और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है, है? लेकिन उसकी इच्छा नहीं है कि लोग शराब पिए, इनकी इच्छा है तो कुछ मात्रा में स्वीकृति देता है, सीमित स्वीकृति देता है, है ना। ये किस भावना से देता है कि आगे चल करके ये छोड़े इसको, ना पिए शराब, है ना। इसी प्रकार प्रभुपाल, इसी प्रकार ये संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है, और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। कृष्ण भूली यही जीव भोग वांछा करे, तो कृष्ण को भूल करके जो जीव भोग वांछा करते हैं यहां पर आते हैं, है ना, तो वही शराब पीने की इच्छा, है ना। आगे जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। तो हृदय में है परमात्मा, है आपके साथ हृदय में है परमात्मा, और आपकी इच्छाओं के अनुसार वे अवसर देते हैं, और आप इच्छाएं करते हैं कि मैं सुख भोग सकता हूं इस तरह से, परमात्मा कहते ठीक है ट्राई कर लो, तो आप का साथ दे रहे हैं परमात्मा, है ना। परमात्मा कहते हैं कि सुख नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन तुम सोच रहे हो सुख मिलेगा, तो देख लो सुख अगर मिलता है तो भोग लो सुख, तो परमात्मा आपके साथ में इस प्रकार से हैं, है ना। और वे निराश भी हैं, लेकिन जीवात्मा आशा करता है सुख भोगने की, और परमात्मा निराश है, क्योंकि वे जानते हैं कि सुख आप नहीं भोग सकते, लेकिन वे आपके गलत प्रयासों में भी सहयोग दे रहे हैं कि तुम खुद अनुभव करो, है ना। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। आगे, शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वो उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता, चाहता नहीं है छुटकारा। क्या समझ, शराबी को शराब पीने से कुछ भी सुख नहीं मिलता है, लेकिन लत पड़ गई है तो छूटना भी नहीं चाहता, इसे छोड़ना भी नहीं चाहता है। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, निर्विशेष बातें चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहे तो। ये दूसरा तात्पर्य का जो हिस्सा है, ये प्रभुपाद ने अपनी तरफ से जो दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब निर्विशेषवादियों का, अब प्रभुपाद जो है निर्विशेषवादियों की भी अब बात को उठा रहे हैं, ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, हाँ ये गलत इच्छाएं हैं तो इच्छाएं ना हो, तो एक दूसरी प्रकार की गलत इच्छा है, ये भी एक दूसरी प्रकार की गलत इच्छा है, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं, निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो, और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है, इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ हैं। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपने निजी इच्छाएं त्याग कर उनके इच्छाओं के साथ सहयोग करे, है ना। भगवद गीता, यही भगवद गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना, और इसलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व तो सौंपा गया। जीवों की अवैध इच्छाएं हैं, है? और भगवान इनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, हा? और ब्रह्मा जी को उत्तरदायित्व तो देना चाहते हैं, तुम ये उत्तरदायित्व लो। और ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा के अनुसार जो है ये कार्य करेंगे। इसलिए हम लोगों की क्या इच्छा होती है कि हम अपनी सेवा में लगाइए, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। हरे कृष्ण मंत्र का जो जप करते हैं, इसमें हमारी प्रार्थना क्या होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। ये निर्विशेषवादी नहीं चाहते हैं भगवान की सेवा करना, है ना। तो ये भी एक क्या है, विद्रोह की भावना है। कोई जीव है जो माया को भोगना चाहता है, वो तो उसकी गलत इच्छा है ही है कि भगवान से स्वतंत्र होकर के माया को भोगना चाहता है। लेकिन दूसरा जीव है वो माया को नहीं भोगना चाहता, लेकिन भगवान की सेवा भी नहीं करना चाहता, यानी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो ये भी जो है एक माया का दूसरा प्रभाव है, ये भी जो है उसकी अवैध इच्छा है। जैसे नौकर है, है ना, तो नौकर जो है सोचता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं, है ना। तो ये उसका जो है गलत विचार है, गलत विचार है। और ऐसे में भी वो क्या होगा, बंधन में पड़ेगा, बंधन में पड़ेगा। वो कहेगा मैं किसी का नौकर नहीं हूं, है ना। तो हमारी जो वैधानिक स्थिति है, स्वरूप है, वो कृष्ण का नित्य दास है। तो जब तक हम जो है अपने को कृष्ण का नित्य दास नहीं समझते हैं, तब तक जो है हम अपने को माया का स्वामी समझते हैं, माया को भोगना चाहते हैं, वो तो गलत है ही। लेकिन अगर हम माया को नहीं भोगना चाहते हैं, हम माया की सेवा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं, अपने को स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, गलत ही, अपराध है ना। इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी भी कृष्ण के अपराधी है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, यही भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, यही भगवद गीता का अंतिम उपदेश है। क्या अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज, तो मेरी शरण में आओ, है ना। तो कृष्ण की शरण में आने का क्या मतलब है? कृष्ण के आदेश का पालन करो, कृष्ण की इच्छाओं में अपनी इच्छा मिलाओ, कृष्ण की इच्छा के साथ सहयोग करो। फिर वो जो निर्विशेषवादी हैं, इसका अर्थ क्या निकालते हैं? है? कृष्ण भी है? कोई ऐसी वस्तु है कि जिनमें कोई इच्छा नहीं है। हम कृष्ण की शरण लेंगे है? तो ना कृष्ण में कोई इच्छा है, ना हमारे अंदर कोई इच्छा है, और कृष्ण भी जीरो हैं, हम भी जीरो हैं, हम भी शून्य हैं, कृष्ण भी शून्य हैं, सब एक है, है? तो फिर वो जो है कृष्ण को भी जीरो बना देते हैं, शून्य, हम भी शून्य हैं, कृष्ण भी शून्य हैं, हम मिल जाएंगे कृष्ण में, है ना। तो यहाँ इसलिए प्रभुपाद ने भगवद्गीता यथारूप दी, प्रभुपाद ने भगवद्गीता यथारूप दी कि कृष्ण परमेश्वर है, उनके अंदर इच्छाएँ हैं, है ना। तो हमारी इच्छा कृष्ण की इच्छा के अनुकूल हो, अनुसार हो, हाँ, हमारी इच्छा जो है कृष्ण की इच्छा के साथ सहयोग करे। तो ये जो है मतलब भगवद्गीता का अंतिम उपदेश है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व तो सौंपा गया। अभी कोई जीव नहीं है, अभी कोई जीव नहीं है, है ना, लेकिन ब्रह्मा जी जो है उन जीवों को जो है शरीर प्रदान करेंगे। वे जीव हैं लेकिन शरीर रहित हैं, भौतिक शरीर उनको नहीं प्राप्त हुआ है, और उनकी जो इच्छाएँ हैं, अवैध इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए भौतिक शरीर मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना, इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। आगे, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतः स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। क्या समझे? भगवान की जानकारी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, संभव नहीं है। लेकिन बाकी जो है इस भौतिक संसार में सब तरह की संभावनाएं हैं, किसी से छिप करके आप जो है कोई काम कर सकते हैं, कोई उसकी इच्छा के बिना, उसके नियंत्रण के बिना आप कर सकते हैं, बहुत से कार्य हैं। लेकिन ईश्वर की जानकारी के बिना कोई भी व्यक्ति अंतःस्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तदनुरूप फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। तो भगवान ही फल दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जो है एक तात्पर्य में भी मतलब पूरी बात बता देते हैं। अब देखिए कितना मतलब प्रभुपाद ने ये विषय भी ले लिया, है ना, कि लोग जो है सोचते हैं कि हम इच्छा रहित हो जाएं, है ना। तो प्रभुपाद का एक प्रवचन कल ही हुआ था, प्रभुपाद का प्रवचन कल ही हुआ था। तो उस प्रवचन में प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे शिष्य से किसी व्यक्ति ने कहा कि इच्छा रहित होना सर्वोच्च मतलब सिद्धि है, सबसे ऊंची स्थिति है, हम इच्छा रहित हो जाएं। तो मेरे शिष्य ने उत्तर दिया, प्रभुपाद कहते हैं मेरे शिष्य ने उत्तर दिया कि इच्छा रहित होना भी तो एक प्रकार की इच्छा है। तो फिर वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया, उसको फिर उत्तर नहीं मिला। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपने शिष्य से बड़ा प्रसन्न हुआ इस बात से कि मेरे शिष्य ने उसको निरुत्तर कर दिया, इच्छा रहित होना भी तो एक इच्छा है। गलत है, गलत इच्छा है, ये भी गलत इच्छा है ना। सेवक से जो है मालिक तभी प्रसन्न होता है जब सेवक के अंदर इच्छा होती है मालिक को प्रसन्न करने की, है ना, उसकी इच्छा होती है सेवा करने की, कि मैं कैसे मालिक को प्रसन्न करूं, है ना, तब मालिक प्रसन्न होता है। मालिक इस बात से प्रसन्न नहीं होता है कि सेवक जो है कोई इच्छा ना करें। तो मालिक इससे प्रसन्न नहीं होता। और यहाँ भगवान तो इतने उदार हैं कि सेवा की भावना से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनको सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान को किसी भी जीव की सेवा की आवश्यकता नहीं, उनकी शक्तियाँ सब कार्य करेंगे। फिर सेवा करने की भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं कि आप मेरा सेवा करने की भावना है। और भगवान शक्ति भी देते हैं सेवा करने की ना। और आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान का कोई काम नहीं रुकेगा, उनकी असीम शक्तियां हैं, सब कार्य हो रहे हैं। तो भगवान को आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छा संबंध बनाने के लिए आवश्यक है सेवा की भावना, सेवा की इच्छा। कल एक घटना हुई, ये अर्चना है यहाँ पर, आज नहीं आई अर्चना, हमेशा आती नहीं आती है अर्चना, उनका कल फोन आया था ना मेरे पास, तो एक लीला जो है बड़ी अद्भुत लीला हुई, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो बहुत सी लीलाएँ होती हैं, लेकिन इस श्लोक के संबंध में एक लीला हुई तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये इसमें हेडिंग है कि श्री कृष्ण ने मेरे लिए फल मंगवाए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, पिछले दिवस पर मैंने कुछ तला हुआ प्रसाद खा लिया जिससे मेरे शरीर में काफ़ी बाधा उत्पन्न हुई थी। इंद्रो, मेरी कुछ ऐसी चिकित्सा चल रही है जिसमें अत्यंत कठोरता पूर्वक परहेज चल रहा है। अब आज के दिवस पर पुनः मेरे सामने कुछ तला हुआ प्रसाद आ गया और पुनः मेरे मन में खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। मैं जानता हूँ कि ये मेरे शरीर में बाधा उत्पन्न करेगा, अतः मेरे मन में कुछ ऐसी दुविधा हो रही थी कि एक ओर मेरी खाने की इच्छा हो रही थी तथा दूसरी ओर मेरे मन में विचार आ रहा था कि यदि मैं इसे खाऊंगा तो ये मेरी चिकित्सा में बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि ठीक उसी समय मेरे कमरे में फल महाप्रसाद का एक दोना आ गया। हरि ओम। श्री कृष्ण तुरंत ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जिससे मेरी चिकित्सा में बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि मुझे फल खाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त एक अन्य आश्चर्य की घटना ये भी हुई कि इस बार जो फल महाप्रसाद मेरे सामने आया था उसमें केले का एक भी टुकड़ा नहीं था। ये भी श्री कृष्ण की व्यवस्था से हुआ, क्योंकि मेरे लिए केला खाना मना है। सामान्यतः फल महाप्रसाद में केले के कुछ टुकड़े अवश्य होते हैं। श्री कृष्ण को चिंता थी कि कहीं मैं स्वादिष्ट होने के कारण केले का टुकड़ा ना खा लूं, अतः इस बार फल महाप्रसाद में केले का एक भी टुकड़ा नहीं था। श्री कृष्ण की अपनी चिकित्सा के विषय में ऐसी चिंतापूर्ण लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब देखिए इस घटना के बाद एक दूसरी घटना बहुत आश्चर्य की है, इस श्लोक के संबंध में ही है। उसी समय अर्चना देवी ने फोन किया, उनका ही फोन आता है और किस दिन मुझे आना है और कौन सा श्लोक करना है। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, मैंने जो ही फल महाप्रसाद खाया ठीक उसी समय गुड़गांव से अर्चना देवी का फोन आया जिसमें उन्होंने कहा, प्रभु जी आपको आगामी शनिवार के दिवस पर गुड़गांव केंद्र में जो प्रवचन देना है उसकी श्लोक संख्या मैंने आपको कुछ समय पूर्व फोन पर बताई थी, वो क्या 2925 थी? कोई अन्य संख्या तो नहीं थी? मुझे संदेह हो रहा है कि मैंने आपको कोई अन्य संख्या तो नहीं बता दी। उस समय मैंने अर्चना देवी की बात पुष्ट की कि उन्होंने यही श्लोक संख्या बताई थी। अब मैंने विचार किया कि जिस श्लोक पर मुझे आगामी शनिवार के दिवस पर प्रवचन देना है उस श्लोक के शब्द अनुवाद तथा तात्पर्य को समझना चाहिए। तो ये घटना किस दिन की है? गुरुवार की है, ये 10 सितंबर। 10 सितंबर को क्या था? गुरुवार था। तो मैंने विचार किया कि इस श्लोक के शब्द अनुवाद और तात्पर्य को समझना चाहिए। अब जिस समय मैंने उक्त संख्या का श्लोक अनुवाद तथा तात्पर्य पढ़ा उस समय मुझे पता चला कि अभी अभी श्री कृष्ण ने मेरे साथ जो लीला की थी उसी लीला का संकेत इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य में था। श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा के लिए अभी अभी फल महाप्रसाद की व्यवस्था की थी ताकि मेरी खाने की इच्छा पूरी हो सके, तथा इस समय इस श्लोक के तात्पर्य में भी इसी प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ। तात्पर्य के कुछ शब्द इस प्रकार थे, प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। तात्पर्य इन शब्दों में सामान्य जीवों की बात बतलाई गई। सामान्य जीवों की बात बतलाई गई है कि श्री कृष्ण जीवों की सभी प्रकार की अशुभ इच्छाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करते हैं, परंतु एक बात हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण अपने समर्पित भक्तों की अशुभ इच्छाओं को पूरा ना करके उन्हें कुछ ऐसी शुभ वस्तुएं प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी अशुभ इच्छाओं को भूल जाएं, अथवा वे अपनी अशुभ इच्छाओं का त्याग कर दें। तो ये भक्तों के प्रति उनकी कुछ विशेष कृपा है। जैसे अभी अभी मेरी इच्छा हुई थी कि मैं तला हुआ पदार्थ खाऊं, परंतु श्री कृष्ण उसी समय अपनी ओर से मेरे निकट फल महाप्रसाद भिजवाकर तले हुए पदार्थ को खाने की इच्छा का त्याग करा दिया। श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि जिस समय उन्होंने जो लीला की उसी लीला का संकेत उसी समय मुझे उक्त श्लोक के तात्पर्य में मिल गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटनाओं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। हरि ओम। देखो, मतलब मुझे पता नहीं था कि जिस श्लोक पर मुझे प्रवचन देना है उसमें इस तरह की बातें हैं, लेकिन अर्चना ने मतलब मुझे फ़ोन किया कि मैंने आपको कोई दूसरा श्लोक संख्या तो नहीं बता दी। मैंने कहा नहीं, वही श्लोक है। फिर मैंने सोचा चलो देख लेता हूं तात्पर्य है कि नहीं है, उसमें क्या तात्पर्य है। और जब देखा तो उसी तरह का तात्पर्य था। तो ये सब जो है मतलब कृष्ण हैं, हृदय में बैठे हैं और इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी। अनुमति की जरूरत, भगवान का नियंत्रण है पूरा, यहां समझिए कि भगवान का नियंत्रण है पूरा, लेकिन वो पिता है और बच्चा जो है गलत इच्छा कर रहा है और पिता जानता है कि ये गलत है, इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा, है ना। लेकिन पिता जो है प्रेम करता है अपने बच्चे से, तो प्रेम में जो है प्रेम के कारण वो जो उसकी इच्छाओं को पूरी भी करना चाहता है, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहता है कि ये इच्छा इसकी बदले, वो ये जो है अनुभव करे, महसूस करे, खुद अनुभव करे कि ये इससे मुझे जो है सुख नहीं मिलेगा। तो वे साथ में रहते हुए, ये जीव के प्रत्येक जीव के साथ में रहते हुए जीव को स्वतंत्रता दे रहे हैं, है ना। लेकिन साथ साथ ही उनका नियंत्रण भी है, उनका नियंत्रण भी है कि आप जितने भी गलत काम करना चाहते हैं आप उनके नियंत्रण में हैं, आप नहीं कर सकते। जैसे आप की किसी हत्या करने की इच्छा है ना, तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते जब तक कि उसकी भी हत्या होनी है, उसके भी कुछ कर्म है ऐसे कि उसकी हत्या होनी है। तो भगवान का नियंत्रण है इस तरह से, तो उनके नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है, उनके नियंत्रण के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन गलत इच्छाओं को भी जो है भगवान पूरा करने का अवसर भी देते हैं प्रत्येक जीव को, लेकिन उसके साथ में है। और भगवान बेचैन है इस बात से कि आप समझिए कि आप जितनी भी इच्छाएं कर रहे हैं उनसे आपको जो है सुख नहीं मिलेगा, आप जितनी भी इच्छाएं पूरी कर लो अपनी उनसे सुख नहीं मिलेगा, और आप सुख पाने के ही लिए ये सब कार्य करना चाहते हैं कि मुझे सुख मिलेगा। तो भगवान इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही जीव के हृदय में ये भाव आता है, विचार आता है कि मैं यहां जितना भी सुख भोगने का प्रयास कर रहा हूं मुझे दुखी दुख मिल रहा है, तो परमात्मा जो है तुरंत कुछ जो है दिशा दिखाते हैं, किसी भक्त से मिला देते हैं, साधु से मिला देते हैं, उसको सही रास्ता मिलता है। तो प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान स्थित होकर के इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो जीव ये महसूस करे कि इस भौतिक संसार में जितनी भी है वो सुख भोगने की कोशिश कर रहा है उसे सुख नहीं मिल रहा है, दुख मिल रहा है, और वो पूरी तरह से निराश हो जाए कि यहाँ सुख नहीं है, मैं चाहे जितना भी कोशिश करूँ सुख भोगने का मुझे दुख ही दुख मिलेगा। तो जब आप पूरी तरह से निराश हो जाएं तो भगवान आपके हृदय में जो है वो दिशा दिखाते हैं, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी,
क्या यहाँ पे साक्षी शब्द का प्रयोग नहीं है क्या? तो यहाँ पे साक्षी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं?
साक्षी, हाँ साक्षी है, भगवान हृदय में जो है साक्षी है। इसमें कहा ना वेद है, वेद का मतलब आप जानते हैं, तो जानते हैं का मतलब साक्षी का मतलब वही है कि जो जानता है, जो देख रहा है, जान रहा है, अध्यक्ष। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है? कुछ और था आपका प्रश्न, क्या है? यही प्रश्न है,
साक्षी शब्द से कोई संबंध है इसका?
साक्षी का मतलब हाँ, साक्षी का मतलब यही होता है, उसी को अध्यक्ष भी यहाँ कहा गया है। आप जानते हैं, आप अध्यक्ष हैं, सुपरवाइजर, सब शब्द उसी तरह के हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा आप पूछिए।
ऐसा है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस संसार में आए हैं, उन्हें जो इच्छा अपने मन में पैदा की उसकी पूर्ति के लिए भगवान हमें इच्छा पूरी करने के लिए संसार में भेज दिया, फिर साथ में माया को भी भेज दिया कि इसको प्रताड़ित करके पुनः मेरे पास लेकर के आओ।
नहीं, यहाँ जो है केवल इच्छा नहीं है, इच्छाएं और कर्म दोनों हैं। इस भौतिक संसार में जीव जो है जब जन्म लेता है तो अपने पिछली इच्छाओं और पिछले कर्मों के कारण जन्मता है। उसके कर्म भी कैसे हैं उसके आधार पर, जैसे किसी की इच्छा तो है राजा बनने की, उसके कर्म नहीं है राजा बनने के, आप समझ रहे, उसके कर्म है कुत्ता बनने का, उसकी इच्छा है राजा बनने की, तो कुत्तों के बीच में वो राजा बन जाएगा, आप समझ रहे। तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी इच्छा जैसी इच्छा हो वैसी उसको मिलेगा, उसकी योग्यता भी तो हो, उसकी उसके कर्म के अनुसार उसकी क्या योग्यता है। तो इच्छाएं और कर्म दोनों के अनुसार उसे अगला शरीर प्राप्त होता है ना। और ये जो है माया का राज है ही है, माया देवी जो है आपको ये संसार में सुख दिखाती है कि यहाँ सुख है, देखो यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, इधर आओ, और वही है लाते मारती है जीव को, जीव को जो है लाते मारती है। और जीव जो है अगर भगवान को भूलना चाहता है और चाहता है कि मैं सुख भोगूं, तो ये जो माया है ये उसी प्रकार की स्थिति पैदा करती है। आप अगर जो है सुख भोगना चाहते हैं, भगवान को छोड़कर सुख भोगना चाहते हैं, तो सुख तो है नहीं। इसका मतलब है कि आप खुद ही चाहते हैं कि माया आपके ऊपर काम करे, हैं कि आपको सुख दिखाई देगा, इधर सुख इधर सुख, क्योंकि सुख तो है ही नहीं और आप फिर भी सुख भोगना चाहते हैं, तो भगवान की माया जो है आप ही चाहते हैं कि माया आपको जो है धोखा दे, आप धोखा खाना चाहते हैं कि नहीं। तो इस तरह की जो स्थिति है ये माया पैदा करती है और उसको जो है लाते भी मारती है, और फिर जब वो रोता है कहता मुझे तो सुख नहीं मिल रहा है, तो माया कहती है अरे रे रो नहीं, रो नहीं, अब आपको तुम्हें सुख मिलेगा, अब तुम्हें सुख मिलेगा। फिर आश्वासन देती है, हैं कि अरे अरे कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम्हें सुख मिलेगा, अब तुम्हें सुख मिलेगा, और फिर लाते मारती है। उज्ज्वल भविष्य, भविष्य उज्ज्वल है ना, अभी तक जो हुआ उज्ज्वल नहीं था लेकिन भविष्य उज्ज्वल है तुम्हारा। तो माया जो है इस तरह से जो है बहुत। और कोई और किसी का?
जब कोई जीव इच्छा करता है भगवान की सेवा करने की तो फिर उसे माया बाधा को देती है, उसमें रिकॉर्ड हो रहा
है। ये परीक्षा है कि आपकी कितनी इच्छा है भगवान की सेवा करने की, आप समझ रहे। तो परीक्षा भी जो है मतलब आवश्यक है कि आपका कितना विचार स्थिर है, कितना दृढ़ है, और कितने जो है आप दृढ़ निश्चय के साथ आप जो है इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो यही होता है फिर विचार बदल जाता है, कि नहीं? आपका भी विचार हुआ कि ठीक है भाई, हम आपकी आपके साथ रहेंगे, आपको बिल्कुल धोखा नहीं देंगे, और फिर जब काम करने लगते हैं तो फिर शुरू होगा अपना उल्टा काम करना, हो जाता ना, होता है, और आपको खुद भी पता नहीं है, हैं? आपका जो है विचार बड़ा पक्का है कि नहीं, अब मैं प्रभु जी आपके साथ बिल्कुल सच्चाई से काम करूँगा, अब आपकी मतलब सेवा में ही रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा, और फिर शुरू कर देते हैं उल्टा काम, तो आपको खुद ही पता नहीं है कि आपका मन किस तरह से बदलता है ना? तो इसलिए आपको जो है परीक्षा तो देनी चाहिए ना, और कितनी कितनी परीक्षाओं में आप जो है मतलब दृढ़ रहते हैं, अविचल रहते हैं, तो ये जरूरी है, तब कहीं आप जो है भगवान की सेवा में जाएंगे, ठीक ना? तो ये जरूरी है कि कुछ परीक्षा हो आपकी,
भगवान के सहयोग भी है, परीक्षा भी है,
भगवान शक्ति भी देंगे, हाँ, परीक्षा परीक्षा भी लेंगे और भगवान जो है शक्ति भी देंगे कि आप परीक्षा में पास हों,
साक्षी भी
हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी कितनी प्रार्थना है भगवान से कि मुझे सेवा में लगाइए, तो भगवान सेवा में भी लगाएंगे, सेवा करने की भी शक्ति देंगे, आपको बुद्धि भी देंगे, है ना? तो भगवान तो सब कुछ करेंगे, आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो ये जो है आपका समर्पण है कि आप कितने समर्पित होते हैं, समर्पण आपको करना है, अपनी स्वतंत्रता आप भगवान को सौंपिए। तो ये जो है आपकी जो है निरंतर आपकी चेष्टा होनी चाहिए कि मैं जो है भगवान को समर्पित होना चाहता हूँ, क्योंकि जीव को भगवान स्वतंत्रता दे रहे हैं, और आप अपनी स्वतंत्रता का जो है दुरुपयोग करने के लिए आप हमेशा आप स्वतंत्र हैं, तो भगवान जो है आपको स्वतंत्रता देते हैं, तो वो स्वतंत्रता अपनी जो है आप भगवान को सौंपिए। इसलिए हर समय आपको अपनी स्वतंत्रता भगवान को सौंपनी है, आप समझ रहे हैं ना? तटस्था शक्ति, ये जीव तटस्था प्रकृति है, तटस्था प्रकृति का मतलब ये है कि ये अपने शुद्ध रूप में ही, इसमें दो प्रकार की जो है प्रवृत्तियां हैं, भगवान की सेवा करने की भी प्रवृत्ति है और भगवान से स्वतंत्र होने की भी प्रवृत्ति है, ये तटस्था प्रकृति है। तो इसलिए हमको जो है क्या करना होता है, देवीम प्रकृति मास्ता, महात्मा नाम पर देवीम प्रकृति मास्ता, जो तटस्थ प्रकृति है वो देवी प्रकृति का आश्रय ले। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ संकेत राधा रानी का है कि राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए, कि जो राधा रानी है भगवान की अंतरंगा प्रकृति है, तो उनके अंदर कभी भी ऐसा विचार नहीं आता है कि वे कभी स्वतंत्र हों, मत प्राणनाथ हस्त सैव ना परा, वो चाहे जितना अन्याय करें मेरे साथ, जब मेरे प्राणनाथ वही हैं, तो राधा रानी का भाव है ना? तो हमारा भाव जो है मतलब ऐसा हो तो हमें वो उनकी शरण लेनी है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा रानी का नाम, राधा रानी और कृष्ण, तो दोनों मिलकर के मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो वो हमें जो है उनकी अंतरंगा प्रकृति का आश्रय लेना है। तटस्थ प्रकृति जो है अपनी हम तटस्थ प्रकृति है, दोनों तरह की प्रवृत्तियां होती हैं हमारे अंदर, तो हमें जो है अंतरंगा प्रकृति का आश्रय लेना है, ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, वो हैंड माइक है, हैंड माइक। ये जोर से बोलो क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही इसमें भी।
भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान का जो धाम है वहाँ चिंतामणि है, सारी चीज़ें सारी इच्छाएँ हमारी वहाँ पूर्ति हो जाती है, और वहाँ भक्तों का संग है जो यहाँ भक्ति करता है, भक्ति करने के बाद वो भगवान के धाम जाता है, तो वहाँ हमारे अंदर वहाँ उस जगह पे ये इच्छाएँ
तटस्था प्रकृति, वही मैं बता रहा हूँ, तटस्था प्रकृति है जीव भगवान की, तटस्था प्रकृति है, तटस्था नहीं समझे, तटस्था तट स्थ तट स्थित, तट में स्थित है, तट का मतलब नदी का तट जैसे, तो आप नदी के तट में खड़े हैं, तो आपके लिए संभावना है कि आप सुरक्षित हाँ भी हो सकते हैं जमीन में जा करके, और आप संकट में पड़ सकते हैं पानी की धारा में जा करके, तो तट स्थित। तो जीव जो है भगवान की एक प्रकृति है, जिसे क्या बोलते हैं तट स्था, तट स्थित, तट में स्थित है। अंतरंगा प्रकृति राधा रानी, तो उनमें तो कृष्ण के प्रति सेवा की भावना के अलावा कुछ दूसरे भाव आते नहीं। जिन जीव के अंदर सेवा की भावना भी आती है और स्वतंत्र भावना भी आती है, आप समझ रहे, तो तटस्थ प्रकृति है, ये प्रकृति ही है जीव ऐसी, तो इसमें और कोई कारण नहीं है, ये अपनी प्रकृति ऐसी है। तो अपनी जो स्वतंत्रता है वो जीव को जो है, मतलब ये है उसमें, ये प्रकृति है उसकी स्वतंत्र होने की, स्वतंत्र होने की भी इच्छा होती है। तो जीव को जो है अपनी ये स्वतंत्रता जो है समर्पण करनी होती है, तो आपको जो है वो इच्छा करनी है, ठीक है ना। तो आप जो है अंतरंगा प्रकृति का आश्रय हैं, देवी प्रकृति माश्रिता, ठीक है। हाँ जी,
तो क्या हम भक्ति करके
फिर से हमारे अंदर इच्छाएं नहीं आएंगी, क्योंकि आपने एक बार अनुभव कर लिया, ठीक है ना, अनुभव कर लिया तो आप दोबारा नहीं चाहेंगे। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप जले एक बार तो दोबारा आप आग में हाथ नहीं डालोगे, ये आपको खुद ही पता है, कोई बताता नहीं आपको, आप समझ रहे हैं। आपने आग में हाथ डाला और आप जल गए तो कोई बताता नहीं आपको, आपको खुद पता है कि क्या परिणाम है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न आप? हाँ जी,
एक तरह से जो माया वो जीवों को टेस्ट करके भगवान के पास जाने की सुविधा भी देती है
माया। हाँ, वैसे तो माया भगवान की ही शक्ति है, ये माया भगवान की ही शक्ति है। माया पिशाची है, पिशाची, हाँ पिशाची, पिशाची माया है ना, तो माया पिशाची है, माया को पिशाची भी कहा जाता है ना, क्योंकि जीव को जो है ये कष्ट पहुंचा रही है ना, तो जीव तो माया को पिशाची भी कहा जाता है। लेकिन अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो वो सब जो है मतलब भगवान के ही प्रशासन के अंदर है। जैसे जेल का विभाग है, जेल का विभाग जो है सरकार के लिए जो है, जेल का विभाग भी हो या कोई भी विभाग हो, सब बराबर है, सरकार का ही विभाग जेल का। लेकिन जो कैदी है उसको अंतर मालूम पड़ता है, भाई जेल में तो कितना मुझे कष्ट मिला, और ये जो है ना यहाँ के अधिकारी लोग तो बहुत कष्ट देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें कृष्ण भावना भावित होना है, और जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो फिर हमें दिखाई पड़ता है कि जो माया देवी है वो भी कृष्ण की ही जो है अध्यक्षता में कार्य कर रही है, ठीक है ना। हाँ जी, माया देवी भी यही चाहती है कि आप भगवान की सेवा करें, और आप जितने परसेंट कृष्ण की सेवा करते हैं उतने परसेंट माया आपको छोड़ती जाती है। माया देवी ऐसे नहीं छोड़ेगी कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो माया देवी आपको अपनी सेवा से छोड़ दें, ऐसा नहीं। लेकिन कृष्ण की सेवा आप में लग जाते हैं है ना, तो माया आपको छोड़ती जाती है। तो 1% आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो माया देवी 1% अपनी सेवा से आपको छुट्टी देती है, फिर 50% कृष्ण की सेवा तो 50% आपको छुट्टी देती है, और 100% कृष्ण की सेवा तो 100% छुट्टी, ठीक है ना, ऐसे नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए सेवा आपको शुरू करना है, मैं सेवा करूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा, माया देवी मुझे छोड़ दे तो मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ऐसे नहीं होता। अभी आपको मनुष्य का जीवन मिला है और आपके पास जो है वाणी है, तो आप हरे कृष्ण का जप करिए, जब आपको कहा जाए माला पर जप करिए और कम से कम संख्या पूरी करिए तो आप करो इसको। नहीं नहीं वो तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, हमेशा करता रहता हूँ, तो माया नहीं छोड़ेगी, जानती बदमाश है, करता नहीं है, वो कहता करता रहता हूँ, और मैं करूँगा हमेशा, मैं दिन रात करूँगा, कहाँ करते, माया जानती बदमाश। आप संख्या करिए कि नहीं इच्छा है करने की तो भी मुझे करना है, हाँ, कर रहे हैं है ना, तो माया कहती है हाँ चलो कुछ है, कुछ कर रहा है। तो इस तरह से आपको जो है मतलब संघर्ष करना होता है कि आप जप कर रहे हैं ना, फिर और जुड़ते हैं आप भक्तों से, कुछ और सेवा मिलती है, फिर उसको और सेवा मिलती है, किस तरह से आप जो है करते हैं और तरह से माया छोड़ दिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। क्षमा करिए, एक कविता, इस श्लोक में कविता है, विष्णु प्रिय देवी ने बनाई है। अंतःकरण में सबके प्रभु हैं, साक्षी रूप में आप बसे, अप्रतिहत ज्ञान से निज मम हृदय की बात को जान रहे। ये आज के श्लोक का हिंदी पद्य अनुवाद है। हरि बोल।